ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया शहीद दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सबको करना होगा योगदान। नेपाल में कोरोना संक्रमण की दर हुई कम। 13,145 नमूनों की जांच में 3,540 में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 2 महीने के अंदर 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है तैयारी। और उत्तर कोरिया ने सन 2017 के बाद के सबसे बड़े मिसाइल का किया परीक्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रजातंत्र की स्थापना एवं पुनर्स्थापना और विभिन्न कालखंड में स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन उत्सर्ग करने वाले शहीदों की स्मृति में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर आज शहीद दिवस मनाया गया। शहीद सप्ताह के अंतिम दिन आज काठमांडू के लैंड चौक स्थित शहीद स्तंभ पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन में शहादत प्राप्त करने वाले शहीदों का एकीकृत अभिलेख तैयार करने का निर्देश किया। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश में विधि का शासन और राजनीतिक परिवर्तन शहीदों के योगदान के कारण ही संभव हुआ है, प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को अपने अपने स्थान से योगदान करना होगा। प्रतिनिधि सभा की आज के लिए निर्धारित बैठक को मार्च 26 गति बुधवार दोपहर 1 बजे के लिए डाला गया है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का जोखिम बरकरार बताते हुए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक मार्च 26 के लिए तय की है। इस बात का उल्लेख संसद सचिवालय द्वारा जारी सूचना में किया गया है। राष्ट्रीय सभा की कल के लिए निर्धारित बैठक स्थगित हो गई है। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव भरत राज गौतम द्वारा आज जारी की गई सूचना में कल के लिए निर्धारित बैठक अगली सूचना तक के लिए स्थगित होने का उल्लेख है। नेपाल में कोरोना संक्रमण की दर में पिछले दिनों के मुकाबले कमी आई है। कुल 13,145 नमूनों की जांच करने पर 3,540 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। वहीं पिछले 24 घंटे में 6,359 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि मार्च 13 गति से आज तक में 32 संक्रमितों की मौत हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता संगीता मिश्रा ने दी। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 83,999 है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी प्रयोगशालाओं के अलावा अन्य प्रयोगशालाओं में की गई कोरोना जांच का परिणाम सरकार को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा के निदेशक डॉ रुद्र प्रसाद मरासैनी ने कहा कि अगले 2 महीने के अंदर 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रवक्ता मिश्र ने बताया कि पहले और दूसरे डोज के रूप में कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर या वेरोसिल कोई भी वैक्सीन ली हो, उन्हें बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही दी जाएगी। पेयजल मंत्री उमाकांत चौधरी ने कहा कि आगामी चैत मासांत तक में मेलमची का पानी काठमांडू लाने के लिए कार्ययोजना के साथ काम हो रहा है। आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री चौधरी ने बताया कि निर्माण कर रही चीनी कंपनी सिनो हाइड्रो काम शुरू होने के 3 महीने में काम संपन्न करने की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा ने कहा कि कुष्ठ रोग लगायत रोगों के उन्मूलन को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 69वें विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा वर्चुअल रूप में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री खतिवड़ा ने कहा कि रेबीज, कालाजार, फाइलेरिया, मलेरिया जैसे रोगों के उन्मूलन के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बता दें कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ने कहा कि वैदेशिक रोजगारी के संदर्भ में नेपाली नागरिकों को विदेशों में फंसाने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित कॉल सेंटर और वैदेशिक रोजगारी संबंधी शिकायतों पर सुनवाई कक्ष का आज उद्घाटन करते हुए मंत्री श्रेष्ठ ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि शिकायत सुनवाई कक्ष से वैदेशिक रोजगारी की समस्या, शिकायत और सुझावों को संकलित कर प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डॉ शेखर कोइराला ने कहा कि स्थानीय तहों का निर्वाचन समय पर ही होना चाहिए। आज सुबह विराटनगर स्थित कोइराला निवास में संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान डॉ. कोइराला ने कहा कि लोकतंत्र में अद्यावधिक निर्वाचन मौलिक हक है, इसलिए यह निर्वाचन किसी भी बहाने से नहीं टाला जा सकता। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आज सुबह से घने कोहरे और शीतलहर के कारण मध्य प्रदेश सहित तराई के विभिन्न जिलों का जनजीवन दुष्प्रभावित बना हुआ है। अधिक कुहासे के कारण हवाई सेवा प्रभावित होने के साथ साथ यातायात सेवा भी प्रभावित है। अधिक ठंड से विपन्न परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सर्दी खांसी हड्डी व जोड़ और दम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये जानकारी स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा ने दी। काठमांडू के गुहेश्वरी से थापाथली पुल तक बागमती के किनारों पर बनी अनधिकृत अस्थायी एवं स्थायी संरचना को 7 दिनों के अंदर हटाने के लिए अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समिति ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। नदी के किनारे बनी अस्थायी संरचना 3 दिनों के अंदर और स्थायी संरचना 7 दिनों के अंदर हटाने की बात का उल्लेख समिति के परियोजना उप प्रमुख अमित रंजीत द्वारा जारी सूचना में किया गया है। कंचनपुर की बेलौरी नगरपालिका में लावारिस अवस्था में 22 किलोग्राम चरस पुलिस ने बरामद किया है। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी की गश्ती टोली ने बेलौरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 की बूटाबारी में भारतीय नंबर वाली मोटरसाइकिल पर हरे रंग के बोरे में डोरी से बांध कर रखे हुए चरस बरामद किये। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से अपना सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि आज स्थानीय समयानुसार सुबह 7:52 पर उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से यह परीक्षण किया गया। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इस परीक्षण की आलोचना की है। इस महीने में यह 7वां परीक्षण है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के परीक्षण से रोकने के लिए उस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि पूर्वी एशिया का यह देश लगातार प्रतिबंधों का उल्लंघन करता रहा है। देश के शीर्ष नेता किम जोंग उनका कहना है कि वो देश की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि रविवार को एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का परीक्षण किया गया, जो कि नवंबर 2017 के बाद से सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट है। जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का अनुमान है कि मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और 30 मिनट में ये 800 किलोमीटर की दूरी तक गई। ये जापान सागर में जाकर गिरी। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया को क्षेत्र को अस्थिर करने की किसी भी हरकत से बाज आना चाहिए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया शहीद दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सबको करना होगा योगदान। नेपाल में कोरोना संक्रमण की दर हुई कम। 13,145 नमूनों की जांच में 3,540 में हुई कोरोना की पुष्टि। 2 महीने के अंदर 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है तैयारी। और उत्तर कोरिया ने सन 2017 के बाद से सबसे बड़े मिसाइल का किया परीक्षण। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।